कशिश ने खोए हुए अंदाज में पूरी बात उन्हें बता दी। सुरेखा जी के जिक्र से ही उनका मन कड़वाहट से भर गया, पर आगे की बात सुनकर वे खुद चौंक गईं। इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। पहले तो वे सदमे में रह गईं, फिर कशिश को यूं सदमे में देखकर उन्होंने खुद को संभाला और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शांत स्वर में बोली, कशिश, ईशान को फ़ोन करके पूरी बात बता दो, या एक काम करो, उसे घर बुला लो और मैं रजनी को बुला लेती हूँ, सारी बात सामने हो जाएगी। कशिश ने बस सिर हिला दिया। अभी उसका दिमाग उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था, पर उसे उस लड़के की कही बात याद थी कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो तुरंत ही हरकत में आ गई। कुछ देर बाद सभी लोग आंगन में इकट्ठे थे। कशिश ने पूरी बात बताते हुए ईशान की ओर वो लिफाफा बढ़ा दिया। हर कोई ये खबर सुनकर हैरान था और ये जानने को इच्छुक था कि आखिर इस लिफाफे में क्या है। ईशान एकदम भावहीन सा खड़ा था, ना तो उसके चेहरे के भाव में जरा भी तब्दीली आई, ना तो उसने कुछ कहा और ना ही उसने उस लिफाफे को थामा। ये देखकर कशिश ने उसकी हथेली थामते हुए वो लिफाफा उसकी हथेली पर रख दिया। आपकी उनसे जो भी नाराज़गी और गुस्सा है उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए और खोल कर देखिए कि क्या भेजा है उन्होंने आपको। उनके लिए न सही, मेरे कहने पर खोल लीजिए प्लीज़। कशिश के अनुरोध पर ईशान ने उस लिफाफे को थाम लिया। कुछ पल भावहीन सा टकटकी लगाए उसे देखता रहा, फिर उसने उस लिफाफे को खोला। अंदर से एक कागज़ निकला, चिट्ठी जैसा कागज़। ईशान ने उस मुड़े हुए कागज़ को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। ईशान, मैं तुम्हारी वो माँ जो माँ कहलाने के लायक नहीं, जिसने तुम्हें जन्म तो दिया पर एक अच्छी माँ का कोई फ़र्ज़ नहीं निभा सकी। मैंने जो किया उसके कारण तुम बहुत नफ़रत करते हो मुझसे, ये जानती हूँ मैं। शायद ये ख़त भी ना पढ़ना चाहो, पर इसे पूरा पढ़ना, अपनी इस अभागिन माँ की आखिरी इच्छा समझकर ही इसे पढ़ना। ईशान इतना पढ़कर पल भर के लिए रुका, फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ बिताया हुआ वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त था, पर जब तक वे मेरे साथ थे, मेरे पास थे, मैंने उनकी कद्र नहीं की। जब अपनी खुदगर्जी में उन्हें खो दिया तब उनकी अहमियत समझ आई। उनके साथ साथ मैंने उस परिवार को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे मेरी हर कमी और बुराई के साथ अपनाया था, अपने खुद के बच्चों तक को अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दिया। इतने गुनाह किए और आज उन्हीं गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ मैं। अपने खून को धोखा दिया मैंने और मेरे खून ने ही मुझसे दगाबाजी कर ली। अपने मासूम बच्चों की आंखों में आंसू छोड़कर चली गई और उसकी सज़ा मिली मुझे, और अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी खून के आंसू बहाती रही मैं। मैंने तुम्हारे पिता की पाक मोहब्बत को अपने स्वार्थ के लिए ठुकराया और मेरी पूरी ज़िंदगी पश्चाताप और नफ़रत की आग में झुलस गई। अपने पति को सबके सामने जलील किया और मेरा खुद का वजूद एक गाली बनकर रह गया। अपने पति को छोड़कर पराए मर्द को खुद पर अधिकार दिया और उसने मुझे एक जिस्म का धंधा करने वाली बाजारू औरत बना दिया। धन दौलत ऐश्वाराम की चाहत में अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी मैंने। वो सब तो मिला मुझे, पर दोबारा कभी मान सम्मान इज्जत और दिल को सुकून नहीं मिला। किसी की बहू बीवी और माँ हुआ करती थी और जब उन्हें छोड़ा तो किसी के जिस्म की आग बुझाने वाली जिंदा लाश बनकर रह गई। मर्यादा की दहलीज लांघने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। तुम्हारे पिता ने इज्जत से अपनी पत्नी का दर्जा दिया और मैंने उनकी कदर नहीं की। अब किसी की रफेल बनकर शर्मिंदगी की मौत मरने जा रही हूँ। मेरे लालच और स्वार्थ ने मुझे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे खुद से ही बेइंतहा नफरत हो गई है। मौत का डर नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हर पल मैंने मौत की ही कामना की है और अब बहुत जल्द मेरी इस जिल्लत भरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। पर इस दुनिया से जाने से पहले कुछ अधूरे काम करने थे मुझे। यहाँ से जाने के बाद ही दिल किया था कि वापस लौट आऊं, हाथ कर पाऊं पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांग लूं, पर मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं थे और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि यहां वापस लौटकर सबका सामना कर सकूं। इसलिए अपने स्वार्थ के बने नरक में झुलसती रही, सालों हिम्मत जुटाती रही और यहां आई। उस दिन एहसास हुआ कि अब उस माफी का कोई अर्थ ही नहीं। कशिश ने ठीक कहा था उस दिन। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी मैंने जो उस शख्स को ठुकरा कर चली गई। उसके बाद हर पल हर लम्हा अपने उस फैसले पर पछतावा हुआ है मुझे। एक पल भी खुश न रह सकी मैं, पछतावे और आत्मग्लानी की आग में झुलसती रही। मेरी खुदगर्जी ने मेरी खुशियों को आग लगा दी। मैं तो सब छोड़कर चली गई, पर तुम्हारे पिता ने तुम दोनों की बहुत अच्छी परवरिश की है और अपने तरह अच्छा और सच्चा इंसान बनाया है। मैं होती तो शायद अपने तरह स्वार्थी बना लेती और मेरी ही तरह तुम दोनों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा हुआ जो मैं तुम दोनों के साथ नहीं थी, पर तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। उनके जाने के बाद यही एक डर था कि कहीं तुम्हारी जिंदगी में मेरी जैसी औरत ना आ जाए, पर उस दिन तुम्हारी पत्नी से मिलकर यह शंका भी मिट गई। तुमने बहुत अच्छी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल किया है। रजनी की शादी भी अच्छे घर परिवार में हो गई। इच्छा तो ठीक है अपने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दो, पर यह हक मैं हो चुकी हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि आशीर्वाद दे सकूं। मैं तो अपनी मनहूस परछाई भी तुम दोनों की जिंदगी पर नहीं डालना चाहती। मैंने अपनी करनी से अपना ओहदा खोया है। मैं तो किसी की पत्नी या माँ कहलाने के लायक भी नहीं। मैं माफी नहीं सजा की हकदार हूँ जो मुझे इन बीते सालों में हर पल मिली है, और अब इस सजा का अंत होने वाला है। मैं तो माँ का कोई फर्ज न निभा सकी। हो सके तो तुम बेटे होने का फर्ज निभाते हुए मेरी चिता को मुखाग्नि दे देना। ये आत्मा शरीर को त्यागे उससे पहले हो सके तो एक बार मिलने आ जाना मुझसे। इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक आखिरी बार अपने बच्चों को देखने की इच्छा है।